नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वरिष्ठ भाजपा नेता और पीएम मोदी ने कहा, महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन बढ़ाया गया। अरुणाचल प्रदेश में आज गालो जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार मोपिन परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे आर्मेनिया के रास्ते चेन्नई लौटे। सरकार ने कहा, भारत ईरान सहित 40 देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है। ईरान से कच्चे तेल के भुगतान में आ रही बाधाओं की खबरों को गलत बताया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। दुनिया भर में मनाया जा रहा है आज ईस्टर। भारतीय एथलेटिक्स मुरली श्रीशंकर ने 8.15 मीटर की छलांग के साथ भारतीय एथलेटिक्स श्रृंखला में शानदार शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले 2023 में पारित कानून को 2029 से लागू करवाने के लिए संसद का बजट सत्र 3 दिन बढ़ा दिया गया है। केरलम के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बजट सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को फिर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में जनसंख्या घटने पर सीटें कम होने के अफवाह पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना में लोकसभा सीट की संख्या में कोई कमी ना हो। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनके बारे में झूठी जानकारी फैलाई जा रही है कि जनसंख्या घटने पर वहां सीटें भी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से महिला सशक्तिकरण से जुड़े इस मुद्दे का पूर्ण समर्थन करने का भी आग्रह किया। साथ ही ये भी कहा कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन भी किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में आज गालो जनजाति का प्रमुख कृषि आधारित त्योहार मोपिन परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेशवासियों को मोपिन की शुभकामनाएं दी। ईटानगर में आयोजित डायमंड जुबली मोपिन उत्सव समारोह में आज केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, ईटानगर के मेयर लिखा नारी तादा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत ईरान सहित 40 से अधिक देशों से कच्चा तेल आयात कर रहा है और ईरान को तेल के भुगतान में कोई समस्या नहीं है। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन दावों का खंडन किया कि भुगतान से जुड़ी दिक्कतों के कारण एक जहाज को चीन की ओर मोड़ दिया गया था। श्री पुरी ने कहा कि देश की रिफाइनरियों ने ईरान सहित कई देशों से कच्चा तेल आ रहा है और संचालन या व्यवसायिक कारण से जहाज अपना मार्ग बदलते हैं। श्री पुरी ने यह भी कहा कि तेल कंपनियों के पास अलग अलग देशों से कच्चे तेल के आयात का अधिकार है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरे कल शाम सुरक्षित रूप से चेन्नई पहुंच गए। इन्हें आर्मेनिया के रास्ते भारत लाया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत ये अभियान चलाया गया। विदेश मंत्री ने मछुआरों की वापसी में सहयोग देने के लिए आर्मेनिया सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। आर्मेनिया ईरान में से भारतीय नागरिकों की निकासी में लगातार सहयोग कर रहा है। मंत्रालय के अनुसार अब तक 1200 से अधिक भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें से 996 लोग आर्मेनिया पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान के पास समझौता करने या जलडमरू मध्य खोलने के लिए अब केवल 48 घंटे शेष है। उन्होंने चेतावनी दी है कि समय सीमा पूरी होने पर ईरान को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीतिक समाधान की भी बात दोहराई है। हालांकि ईरान ने संघर्ष समाप्त करने के अमरीकी प्रस्ताव को एक तरफा और अनुचित बताकर खारिज कर दिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेमौसमी बरसात और ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और किसानों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि स्थिति के आकलन के बाद जरूरी कदम उठाए जाएंगे। दुनिया भर में आज ईस्टर मनाया जा रहा है। यह अवसर प्रार्थना, पश्चाताप और यीशु मसीह के जीवन के अंतिम चरण को याद करने के लिए पवित्र सप्ताह का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान लोगों को सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग और क्षमा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस दिन को आशा और नवजीवन का उत्सव बताया और विश्वास व्यक्त किया कि ये त्योहार सभी के जीवन को प्रकाशित कर जीवन में शांति और आनंद लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रभु यीशु की शिक्षाएं करुणा और समाज में एकता की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने सूचित किया है कि QS विश्व रैंकिंग 2027 के लिए डेटा जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक आधिकारिक पत्र में UGC ने सभी पात्र उच्च शिक्षा संस्थानों से वैश्विक रैंकिंग में उचित प्रतिनिधित्व के लिए 12 अप्रैल से पहले QS हब पोर्टल के माध्यम से आवश्यक संस्थागत डेटा जमा करने का अनुरोध किया है। ईटानगर के मौसम केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के कुरुंगकुमे, सियांग, वेस्ट सियांग, अपर सियांग और दिबांग वैली जिलों में कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना जताई है। इसके अलावा इसने अपर सुबनसिरी, शी योमी और लोअर दिबांग वैली जिलों में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना का अनुमान लगाया है। भारतीय एथलेटिक्स श्रृंखला में मुरली श्रीशंकर ने पुरुषों की लंबी कूद में 8.15 मीटर की छलांग लगाकर अपने सीजन की शानदार शुरुआत की। बेंगलुरु में 27 वर्षीय श्रीशंकर ने अपने चौथे प्रयास में 8 मीटर का आंकड़ा और एशियाई खेलों के लिए निर्धारित 7.91 मीटर का मानक पार करने वाले एकमात्र एथलेटिक बने। पुरुषों की ट्रिपल जंप में पूर्व एशियाई चैंपियन अब्दुल्ला अबू बकर ने 16.82 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वेश कुसारे ने 2.23 मीटर की छलांग लगाकर पुरुषों की ऊंची कूद में जीत हासिल की। बरानिका एलंगोवन ने महिला पोल वॉल्ट में शानदार प्रदर्शन किया, जबकि एनसी सोजान ने शैली सिंह को महज 2 सेंटीमीटर के अंतर से हराकर महिला लंबी कूद का खिताब अपने नाम किया। पुरुषों के भाला फेंक में बिविन एंटनी ने 77.53 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ जीत हासिल की। श्रृंखला की अगली प्रतियोगिता कल उदयपुर में होगी। इसके बाद संगरूर और रांची में अगले दौर के मुकाबले होंगे। विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में किशोर आयु वर्ग के 18 वर्षीय तीरंदाज पायल नाग ने बैंकॉक में आयोजित महिला कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल में विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ भी भारत ने 7 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। कंपाउंड पुरुष स्पर्धा में तोमन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि भावना ने रिकर्व महिला स्पर्धा का खिताब अपने नाम किया। तोमन ने ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिलने को हराया, जबकि भावना ने थाईलैंड की पथराफोन पत्तावेको को मात दी। दो बार के पैरालंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह को रिकर्व फाइनल में इंडोनेशिया के होलीदीन से हारने के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं स्वाति चौधरी ने भी महिला वर्ग के स्वर्ण पदक मुकाबले में दक्षिण कोरिया की ओक ग्यूम किम से हारकर रजत पदक जीता। इससे पहले श्याम सुंदर स्वामी के कंपाउंड पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में अपने ही देश के पेरिस पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता राकेश कुमार को कड़े मुकाबले में हराकर कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।